172 آیت کا نام ہی لکھ لیں آیت الست. اب اس کو سنتے وقت آپ امیجینیشن میں رکھیں اپنے آپ کو. ابھی آپ اس دنیا میں نہیں آئیں, یہ جسم نہیں بنے تھے, ان کا وجود نہیں تھا. یہ واقعہ عالم ارواح میں ہوا تھا. اب اہل عرب اس وقت جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا وہ ذہنی طور پہ بڑے سمپل تھے, آپ یہ کہہ لیں جیسے آج گاؤں کے سادے سے لوگ ہوتے ہیں. وہ مشکل باتیں نہیں سمجھ سکتے تھے. ایک صورت کیا تھی, ان کو بتایا جاتا پہلے اللہ نے روحیں بنائی, پھر جسم بنے, پھر اس میں امر آیا, پھر روح, وہ تو سارا پیچھے پڑ چکے ہیں خلق اور امر کے, اور اس کے بعد لیا. اسلام نے یہ سب باتیں چھوڑ چھاڑ کے سیدھی سی بات شروع کر دی 172 میں, وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, اور یاد کرو جب کہ نکالا آپ کے رب نے اپنی تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو, آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا, اور جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہونے ان کی روحیں زمین پہ ریت کے ذروں کی طرح پھیل گئیں. حدیث میں جو لفظ آتے ہیں وہ ہے جنود مجندہ, روحوں کے لشکر تھے. آج کتنے انسان ہیں حج کے لے آئیے تصور میں, کتنے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ تو کتنے کو ہیں, اس دور کے لوگوں کا شاید 1% بھی نہیں ہوں گے پوری دنیا کے. اول آخر جتنے لوگوں نے اس دنیا میں آنا تھا سب کی روحوں کے لشکروں کے لشکر اللہ تعالیٰ نے میدان میں پھیلا دیے. عالم امر کا یہ واقعہ ہے, خلق کا نہیں تھا, اس لیے یہ وقت کی قید سے بالکل آزاد تھا. سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا, من ظہورہم ذریتہم. یہاں سے ایک بات ابھی پتہ چل جاتی ہے, اور وہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے ہم سب کی روحیں ہم عمر ہیں. دنیا میں آنے کے اور یہ جسموں کے اعتبار سے ہماری عمروں میں فرق ہے. جیسے آپ اپنے ابو سے اپنی امی سے کم از کم 18, 20, 30 سال, 15, 25 سال چھوٹی ہیں نا, لیکن روح آپ کی اور آپ کے امی ابو کے ایک برابر ہے. ہم سب کی روحیں ہم عمر ہیں, جسموں کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سب کو پیدا کیا. کچھ لوگوں نے اس کو ایک ایسے ہی کہہ دیا یہ ایسے ہی ہوا ہوگا, تو لکھ لیجئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بس ایک تصوراتی بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں. جو ذات کل روحوں کو پیدا کر سکتی تھی آج دنیا میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ بچے کو دنیا میں بھیجتی ہے, اور کل ہمارا ایمان ہے کہ دوبارہ جسم ملیں گے اور ہماری روحیں جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی, وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اس رب کے لیے کیا مشکل ہے. آج اس دنیا میں بچے کا پیدا ہونا کیا عقل میں آنے والی بات ہے, لیکن چونکہ ہم دن رات دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے. تو جب یہ ممکن ہے نا تو وہ بھی ممکن تھا, اور کل قیامت کے بعد کی حاضری بھی ممکن ہے. تو لہٰذا یہ ہوا تھا, لکھیے یہ واقعہ ہوا تھا, ایز اٹ از, جیسے آپ کہتے ہیں کل میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا, بالکل یس اٹ ہیپنڈ. اور ایسے وقت میں یہ سارے معاملات جو ان کے ساتھ ہوئے, اس وقت ہم سب کو اس کا شعور بھی تھا اور یہ سب کچھ ہوا. اور آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ تخلیق آدم کے موقع پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسان کو سجدہ کروایا گیا تھا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان ہوا تھا, اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ عزت دینے کے بعد پھر پوری نسل آدم کو قیامت تک پیدا ہونے والوں کو اپنے سامنے ایک وجود دیا, اور اس وقت ان سے کیا بات لی تھی. اس کو میں ایک حدیث پڑھ دیتی ہوں, بس مجھے تو ڈر لگتا ہے اس موضوع پہ زیادہ بات کرتے ہوئے کیونکہ معاملہ غیب کا ہے. عبی بن کعب راوی ہیں, اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک قسم یا ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں ترتیب دی, یعنی ہر ٹائم میرا میں آنے والے لوگوں کو آرگنائز کیا, ان کو انسانی صورت اور بولنے کی طاقت دی, یعنی ہمیں وقتی طور پہ شکلیں بھی ملی تھی اور بولے بھی تھے, پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا, ایسی جیسے کہ مجھے کہ تم اپنے اوپر خود گواہی دو, یہ مطلب ہے. کیا پوچھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں, تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو تو اس کا علم نہ تھا. خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میرے سوا کوئی رب نہیں. تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر کو بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد اور میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے. آپ کہتے ہیں نا کہ نبی آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں, مذکر, ان نہ مانتا مذکر, یاد دلانے والے, ریمائنڈ کرنے والے, وہ یہی وعدہ یاد دلاتے ہیں. اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا. اس پر سب انسانوں نے کہا ہم گواہ ہوئے, आप ही हमारे रब और आप ही हमारे माबूद हैं। आपके सिवा कोई ना हमारा रब है ना कोई माबूद है। ये वाक्य हो चुका है आपके और मेरे साथ। अल्लाह ताला इसी का तस्करा करते हैं कि जब ये सब हुए तो क्या हुआ, अब सुनिए। वशहदहुम अला अनफुसिहिम, और इनको खुद अपने खिलाफ गवाह बनाया। क्या पूछे इसको, आप चाहें तो कॉमर्स में कर लें या हाईलाइट कर लें, ये अल्लाह सुब्हान तआला के अल्फाज है। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। आ मैंने क्या, लस्ता नहीं, रब्बी रब्बिकुम तुम्हारा रब, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। एम आई नॉट योर लॉर्ड, या ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे से के कहे क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, क्या मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पूरे होश और हवास के साथ कॉन्शियसली सेल्फ कॉन्शियस करते हुए ये इकरार हुआ, कोई धोखे से नहीं हो गया, अल्लाह ने दिया। और ये है वो अहद जो इंसान को जानवरों से मुमताज करता है, ये है वो अहद जिसकी बुनियाद पे क्यामत के दिन हिसाब होना है। अगर ये अहद ना लिया होता तो इंसान कहता मुझे तो पता ही नहीं था। कालू बला शहीदना, उन्होंने कहा क्यों नहीं हम इस पर गवाह हैं। सबने कहा हम गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला तू रब है, और साथ ही साथ अंतकूलु यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा ग़ाफ़िलीन, कहीं ऐसा न हो कि तुम ये कह दो कि क़ियामत के दिन के हम तो इससे गाफिल थे। बात वाज़े, यह अहद क्यों लिया, ताकि क़ियामत के दिन तुम अल्लाह ताला पे ये इल्ज़ाम न लगा दो कि अल्लाह ताला हम तो गाफिल थे, हमें तो पता भी नहीं था। और दूसरी बात 173 आयत में औ तकूलु इन्ना अशरका आबाउना मिन क़ब्लु, या तुम ये कहो कि शिर्क तो हमारे अबाउ अजदाद ने किया था हमसे पहले। वकुन्ना ज़ुर्रियतम मिन बादिहिम, और हम इनके बाद इनकी नस्ल में से थे। यानी हम पैदा हुए, हमने अपने बाप दादा को शिर्क करते देखा, तो चूंकि हम उनके बच्चे थे तो हमने भी तो वही करना था। तो क्या अफतुहलिकुना बिमा फअलल मुबतिलून, तो परवरदिगार क्या तू हमें हलाक करेगा इन बातिल पसंद लोगों के काम पर। यानी हमारे बड़े जो तौर तरीके अख्तियार करके हम वही चल रहे थे, हमें किसी ने बताया ही नहीं। देखिए ये उस सवाल का जवाब है जो आपके बच्चे भी आपसे करते होंगे कभी कभी, कि अम्मी अगर मैं अपने नॉन मुस्लिम दोस्त को ये कहता हूँ कि तुम मुसलमान बन जाओ, तो वो क्यों मुझे नहीं कहे कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ। सवाल पैदा होता है, यानी बास माए कहती हैं, बच्चे सवाल करते हैं कि अम्मी देखे आप तो मुसलमान थे ना, तो मैं मुसलमान हो गया, तो मेरे उस दोस्त का क्या कसूर है जो गैर मुस्लिम घर में पैदा हुआ। ये उसका जवाब है। चार बातें अक्सर मैं ऐसे मौके पे लिखाती हूँ, आप भी लिख लीजिए जल्दी से, आपका हक है। देखिए अल्लाह ताला की मार्फत के चार रास्ते हैं अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखे, और ये अब आपको इस सारे सवालों का जवाब दे देगा कि कुछ लोग नॉन मुस्लिम घरों में पैदा होते हैं, क्यों ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम हो, और हम मुसलमानों को क्या कोई प्लस पॉइंट मिला है। तो देखिए अल्लाह की पहचान के चार रास्ते हैं। नंबर एक, यही वादे अलस्त। आज की जुबान में अगर मैं कंप्यूटर की थोड़ी सी लैंग्वेज बोलूं तो बर्दाश्त कर लीजिएगा कि अल्लाह ताला ने हम सब की मेमोरी में ये प्रोग्रामिंग कर दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह तो बाद में आया ना, हालांकि उसी के साथ है, ठीक है। यहाँ बड़ी मजे की बात है, थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जहां अल्लाह ताला को एक मानने का वादा है ना, तो भी मैंने बोला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है, तो एक ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि चलो लोग अल्लाह को तो मानते हैं तो भी मोहम्मद सल्लम को क्यों माने। तो नंबर नोट कर लीजिए, दो आयतों के सूरत माईदा की आयत 19 आप पढ़ चुके, तर्जमा के ए अहले किताब, तुम्हारे पास आ चुका है हमारा वो रसूल जो तुम्हारे लिए दीन को वाजे कर रहा है रसूलों के एक वक्फे के बाद, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये कह दो कि हमारे पास तो आया ही नहीं कोई बिशारत देने वाला ना खबरदार करने वाला। वहां नबी सल्लम का वजूद इतमाम हुज्जत है, समझे बात को। यहाँ जैसे अल्लाह की रबूबियत के वादे हैं ना, तो वहां नबी सल्लम के रसूल होने का वादा है। इसी तरह सूरत अल अनाम की आयत 156 में हम रिसेंटली पढ़ चुके कि कहीं तुम ये ना कहो कि किताब तो दी गई थी हमसे पहले दो गिरोहों को, और हम तो इन किताबों को जुबान ना समझने की वजह से पढ़ भी नहीं सकते थे। तो गोया कि आप कह लीजिए कि अल्लाह ने अपने रब होने का वादा ले लिया, नबी सल्लम के रसूल होने का, और कुरान का वादा ले लिया। अब ये सब कुछ जब हो गया, अब क्या होता है उसके बाद, ये सब के अंदर है, सब इसमें बराबर है। आपकी गोद में कोई बच्चा आता है या किसी पेगन माँ की गोद में, ये एथियस माँ की गोद में आता है, सब बच्चों को ये वादा याद है। और रिवायात में आता है कि ये वादा बच्चे को याद होता है। ये मैंने जब बातें पहली दफा पढ़ी थी, बहुत मेरा अर्ली दौर था पढ़ने पढ़ाने का, यकीन करे जिसको कहते ना कि बंदा बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है, ऐसे जुबान नहीं खुलती कि ये वादा बच्चे को याद होता है जब तक कि उसकी जुबान नहीं खुलती। यही था वो वादा जिसकी बुनियाद पे ईसा बोले कि इन्नी अब्दुल्ला। माँ ने सिखाया था कोई? जकरिया ने सिखाया था? किसने सिखाया था? अल्लाह ने सिखाया था, उसकी रूह में था। आज भी किसी बच्चे को बोलने की दावत दी जाए तो वो यही बोलेगा इन्नी अब्दुल्ला, क्योंकि उसमें। और ये वादा बच्चे को कब भूलता है? जब जुबान खुलती है और रंग रूप चढ़ता है मुआशरे का और इर्द गिर्द का, खानदान का, उस वक्त ये होता है। और जितना बंदा नेकियां करता है ना बचपन से ही, उतना ही वादा याद रहता है। आपको मुश्किल तो लग रही है ये बातें, लेकिन बर्दाश्त करते जाएं, दोबारा सुन के लिख लीजिएगा। लेकिन याद रखें कि यही वादा जो है ये नूरे फितरत है। कई दफा आपने मेरे मुंह से ये बात सुनी है ना कि बंदे को अल्लाह ने नूरे फितरत दिया, और उस नूरे फितरत पे जब ये नूरे हिदायत मिलता है ना, जब आपको मिल रहा है किताब का, तो नूर अला नूर है, हिदायत पे हिदायत। बच्चा बचपन से अल्लाह को मानना चाहता है, कुछ को हम जैसों को माहौल मिला। अब दूसरी चीज चलते हैं जो अल्लाह की मार्फत देती है, वो क्या है? कायनात है। सच बताइए, ये कायनात जिस खूबसूरत तरीके से चल रही है, हर बंदे को सोचने पे मायल नहीं करती? करती है कि नहीं करती? कैसे? कि ये कायनात किसी के बनाने से चली है, इसमें भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का कोई फर्क नहीं है। तीसरी चीज अकल, बंदे की अकल उसको बताती है कि इस कायनात को भी बनाने वाला है। और चौथी चीज है वही रेवल्यूशन, ठीक है, इंस्टिंक्ट, विजडम, यूनिवर्स, और आखिरी चीज इंसान की वही। हम मुसलमानों को सिर्फ एक प्लस पॉइंट मिला है कि हमें जो वही मिली वो प्योर है, मिली दूसरों को भी थी लेकिन बदल गई। आज के नॉन मुस्लिम बच्चों को सिर्फ 1/4 चीज नहीं मिली, 3 चीजें सबको मिली है। इसलिए हर इंसान से ये मुतालबा है कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये फितरत की पुकार है। अभी एक सिस्टर थी तो किसी बच्ची की कहानी सुना रही थी कि उन्होंने अपने बाप को माँ को देखा तो लिपट पड़े और रो पड़े और एक दूसरे को चूम रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जिस तरह बच्चा अपनी माँ या अपने बाप को देख के लिपटता है ना, यही हमारी रूह अल्लाह के साथ जाती है। कोई नहीं बताता ये माँ है, काली माँ है। आप गोरी औरत की गोद से निकल के काली माँ की गोद में सुकून महसूस करते हैं, क्यों? फितरत है ना। इसी तरह अल्लाह ने हम सब के साथ ये मामला किया हुआ है। ये अल्लाह सुबहाना ताला की जात है जिसने हम सबको पैदा किया, और हम सब ये करते हैं। और शैतान फिर आके हमें बहकाता है, कभी किसी को किसी दीन पे, कभी किसी दीन पे, कहीं कुछ कहीं कुछ। इसीलिए मुशरिकीन की औलादें भी मुसलमान है। कभी किसी नॉन मुस्लिम बच्चे को ऐसे ना कहा करें कि ये नॉन मुस्लिम है, इसको हाथ लग गया तो हाथ धो लो, ये अजीबो गरीब से मिथ है हमारे, ये मुसलमान है। एक जंग हुई तो मुशरिकीन के बच्चों पे कोई बात हुई थी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुनो, तुम में से बेहतर लोग मुशरिकीन की औलाद में हैं। यदि तुम में से बहुत सारे लोग पहले मुशरिकीन ही थे ना, आज मुसलमान हो गए हो। याद रखो, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर जुबान चलने पर इसके माँ बाप यहूदियत या नसरानियत की तालीम देते हैं। एक रिवायत सुनिए, बहुत ही खूबसूरत हदीस है इस बारे में, और ये मजमून ही ऐसा है कि ये सुनानी ही पड़ेंगी आपको। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि क्यामत के दिन दोजखी से कहा जाएगा, यानी दोजख में जो बंदा होगा, अगर तमाम दुनिया तेरी हो तो क्या तू खुश है कि इसे अपने फिदिये में देकर मेरे अजाबों से आज बच जाए, यानी रेंसम में दे के बच जाए इस जहन्नम के अजाब से। उसको एक ऑफर दी जा रही है, वो कहेगा हाँ अल्लाह ताला, हाँ यानी मैं करूंगा ऐसा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने तो इससे बहुत ही हल्के दर्जे की चीज तुझसे तलब की थी, और इसका वादा तुझसे लिया था कि मेरे सिवा तू किसी और की इबादत ना करे, लेकिन तू इसे तोड़े बगैर ना रहा और दूसरे को मेरा शरीक ठहराया। अब ये वादा कब हुआ था, इसके बारे में मुस्नद में एक रिवायत है, नोमान नामी मैदान में अल्लाह ताला ने आदम की पुश से यौमुल अरफा में ये लिया, यानी अरफे का दिन था, वो औलाद को किया और उनसे ये वादा लिया, और उसके बाद फिर आपने ये आयत की तिलावत की मुबतलून तक। एक रिवायत ये भी आती है कि उस वक्त लोग चींटियों की तरह थे और तर जमीन थे। सोचिए कैसा फील हो रहा है, जमीन गीली थी और हम लोग चींटियों की तरह के बने हुए थे। दहाक, जो लोग इल्म से ताल्लुक रखते हैं उनको इनके बारे में बहुत कुछ पता होगा। 6 दिन की उम्र के इनके बेटे का इंतकाल हुआ तो आपने फरमाया, जाबिर इसे दफन करके इसका मुंह खोल देना और गिरा भी खोल देना, क्योंकि ये मेरा बच्चा बिठाया जाएगा, यानी कब्र में इसको बिठाया जाएगा और इससे सवाल किया जाएगा। जाबिर ने इस हुक्म को माना। फिर मैंने पूछा, आपके बच्चे से क्या सवाल होगा और कौन सवाल करेगा? तो फरमाया, इस मीसाक के बारे में जो सुल्ब आदम में लिया गया सवाल किया जाएगा। मैंने पूछा, वो मीसाक क्या है? फरमाया, मैंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर हाथ फेरा तो जितने इंसान क़यामत तक पैदा होने वाले हैं सब की रूहें आ गईं। अल्लाह ने इनसे अहदो पैमान लिया कि वो इसी की इबादत करेंगे, इसके सिवा किसी को माबूद नहीं मानेंगे, खुद इनके रिस्क का कफील बना। अल्लाह ने उस वक्त वादा कर लिया था कि तेरा रिस्क मेरे जिम्मे है, कब, जब मेरा वजूद भी नहीं था। फिर इनको सुल्बे आदम, सुल्ब समझते हैं पुश्त बैक, सुल्बे आदम में लौटा दिया। बस ये सब क्यामत से पहले ही पैदा होंगे। जिसने इस वादे को पूरा किया और अपनी जिंदगी में इस पर कायम रहा इसे वो वादा नफा देगा, और जिसने अपनी जिंदगी में इसकी खिलाफ वर्जी की इसे पहले का वादा कुछ फायदा ना देगा। और जो बचपन ही में मर गया, ये भी सुन ले, बच्चे मर जाते हैं ना मुशरिकीन के भी और मुसलमानों के, का जो बचपन ही में मर गया वो मीसा के अव्वल पर और फितरत पर मरा, यानी उस बच्चे का हिसाब नहीं होगा। अल्लाह अकबर। इब्ने जरीर की रिवायत है कि बनी आदम की पीठ से अल्लाह ने इनकी नस्लें ऐसे निकाली जैसे कंघी बालों में से निकलती है। फिर इनसे अपनी रबूबियत का सवाल किया, उन्होंने इकरार किया, फरिश्तों ने गवाही दी, इसलिए कि ये लोग क्यामत के दिन इससे गफलत का बहाना ना करें। हजरत उमर से किसी ने इस आयत की तफसीर पूछी, क्योंकि ये बड़ी मारूफ आयत है ना, तो आपने यही सवाल अल्लाह के नबी से हुआ था, कहा कि हाँ अल्लाह के नबी से भी लोगों ने कहा था कि इस आयत की तफसीर बताएं, तो आपने मेरे सुनते हुए फरमाया, यानी हजरत उमर ने नबी सल्लम से सुना कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आदम को पैदा किया, फिर अपने दाएं हाथ से इनकी पीठ को छुआ, इससे औलाद निकली। फरमाया, मैंने इन्हें जहन्नम के लिए पैदा किया है, ये जहन्नमियों के अमल करेंगे। तो आपसे सवाल हुआ, फिर अमल किस गिनती में? आपने फरमाया, जो जन्नती हैं इनसे मरते दम तक जन्नतियों ही के अमाल सरजत होंगे और वो जन्नत में जाएंगे। हाँ, जो जहन्नम के लिए पैदा किया गया है इससे वही अमाल सरजत होंगे, इन्हीं पर मरेगा और जहन्नम में दाखिल होगा। ये अबू दाऊद की रिवायत है। ये अगली आयतों में मजमून आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। हदीस में, क्या औलादे आदम को निकालकर इनकी दोनों आंखों के दरमियान एक नूर रखकर हजरत आदम के सामने पेश किया। हजरत आदम ने पूछा, या अल्लाह ये कौन है? फरमाया, ये तेरी औलाद है। इनमें से एक के माथे की चमक आदम को बड़ी अच्छी लगी। पूछा, या अल्लाह ये कौन है? जवाब मिला, ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर है और इनका नाम दाऊद है। यानी जो बच्चे थे बाद में, हजरत आदम को बताया गया कि ये कौन सा बच्चा होगा। पूछा, अल्लाह इनकी उम्र कितनी रखी है? फरमाया, 60 साल, 60 ईयर्स। या अल्लाह, 60 साल, यानी ये तो बड़ी थोड़ी उम्र है, मेरा इतना खूबसूरत बच्चा, मेरी उम्र में से 40 साल भी इसको दे देना, मैं 40 है तो इसके 100 पूरे कर दे। कहा ठीक है। बस जब हजरत आदम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो आपने फरमाया कि मेरी उम्र में से तो अभी 40 साल बाकी है। यानी नबियों को पता होता था अपनी उम्र और उनसे पूछ के फरिश्ता जान निकालता था। फरिश्ते ने कहा, आपको याद नहीं कि आपने ये 40 साल अपने बेटे हजरत दाऊद को हिबा कर दिए हैं? बात यह है कि चूंकि आदम ने इनकार किया तो इनकी औलाद भी इनकार किया दी है। आदम खुद भूल गया और इनकी औलाद भी भूलती। सूरह ताहा में आप पढ़ेंगे, फनसी आदम वलम नजित लहु अज़्मा, हमने आदम को भूलने वाला पाया, उनमें अज़्म नहीं था, तो ये बाद में भूल गए। रिवायत में आता है कि अल्लाह ने उनको भी 40 दे दी, इनको भी 40 दे दी। क्या क्या दी, ये तिर्मिज़ी की रिवायत है, सही रिवायत है ये। एक रिवायत में हजरत आदम ने देखा, अब रूहों के मामले ना, किसने बताने थे हमें ये, अगर हम इस इल्हामी किताब को ना पढ़ते। अब रूहों के हालात सुनिए, आज तो हम इंसानों के देखते हैं। जब आदम ने देखा कि कोई जुजामी है, कोई कोड़ी है, कोई अंधा है, कोई बीमार है, तो पूछा, या अल्लाह इसमें क्या मसला था? यानी अल्लाह सारे मेरे ही बच्चे हैं, तो कुछ को तूने बीमार, किसी को लंगड़ा, किसी को कुछ कर दिया, जैसे आज भी लोग पूछते हैं ना। तो पूछा कि ये क्या बात है? फरमाया, इसलिए कि ये मेरा शुक्र अदा करे। यानी कुछ लोगों को अल्लाह ने कमजोर इसलिए किया कि बाकी लोग इन लोगों को देखकर शुक्र करे। हजरत आदम ने पूछा, या अल्लाह इनमें ये ज्यादा रोशन और नूरानी चेहरे वाले कौन है? कौन आए होंगे जहन में, कोई गुनाहगार तो नहीं होंगे ना? کو بڑے فیئر فیشیل کرائے ہوئے لوگ، اس ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے واللہ ہی. پوچھا یہ کون ہے چمکتے ہوئے چہروں والے؟ فرمایا انبیاء ہیں. کسی شخص نے رسول اللہ سے پوچھا ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ہمارا ذاتی عمل ہے یا پہلے سے فیصلہ ہوا ہوا ہے؟ جیسے ابھی بات ہوئی نا پیچھے کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا پہلے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھوں سے نکالا، ان کو گواہ بنایا، پھر اپنی دونوں مٹھیوں میں لیا ایسے، اور فرمایا یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں. بس اہل جنت پر تو نیک کام آسان ہوتے ہیں اور دوزخیوں پر برے کام آسان ہوتے ہیں. اللہ ملاتا جنت. جو آج میں اور آپ اچھے کام کرتے ہیں اور آسانی سے کر لیتے ہیں نا، تو اللہ نے اپنے علم سے ہی اس دن لکھ لیا تھا کہ ان کو یہ نیک کام بڑا آسان لگے گا اور یہ ان کی تو جان ہی نکل جائے گی اس نیک کام کے اوپر. یہ اس دن کے فیصلے ہوئے ہیں، تقدیر بوجھ نہیں ہے، علم ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور سارے فیصلے ہو گئے، جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنے والا تھا ان کو دائیں مٹھی میں لیا اور بائیں والوں کو بائیں مٹھی میں لیا. پھر فرمایا دائیں ہاتھ والوں، انہوں نے کہا لبیک وسعدیک. فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں. پھر سب کو ملا دیا. کسی نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ اسے دیکھیں کہ صحابہ بھی کتنا علم لینے کے طلبگار تھے نا. فرمایا اس لیے کہ ان کے لیے اور اعمال ہیں جنہیں یہ کرنے والے ہیں، یہ تو صرف اس لیے کہلوا دیا کہ انہیں یہ عذر نہ رہے کہ ہم اس سے غافل تھے. پھر سب کو صلب آدم میں لوٹا دیا گیا. اللہ اکبر. اور ان کو پڑھتے ہوئے کیا فیل ہو رہا ہے؟ میں کیا ہوں؟ کائنات کا سب سے چھوٹا ذرہ ہوں میں، سوئی کی نوک پہ لگا ہوا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوں میں. اور جن کی ناراضگی سے ڈرتی ہوں وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور جن کو خوش کرتی ہوں وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور رب جس کو ناراض کرتی ہوں کتنی بڑی ذات ہے. دیکھیں میں سوچتی ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن شاید ہم نے اپنی ماؤں کا دل کتنی دفعہ توڑا ہوا ہے. بچپن میں ہم اپنی ماؤں کو کتنا ستاتے ہیں. اسی طرح شاید شعوری یا غیر شعوری طور پہ ہم اپنے استادوں کو بھی بہت ستاتے ہیں. چلیں ماؤں کو بھی پیچھے کر دیں، استادوں کی تو بات ہی نہ کریں، ان کا کیا حق. اللہ کو سوچیے دن میں اللہ کو کتنی ہی دفعہ مایوس کرتے ہیں ہم. اللہ کا دل نہیں توڑتے، میں نہیں کہتی کوئی تشبیہ لے کے، لیکن ہم دن میں کتنی بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے جیسے گندگی سے بھرے ہوئے انسان ان کو خوش کرتے ہیں اور رب کو بلا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو امیر غریب اور مختلف قسم کے لوگوں پہ نظر پڑی. کہنے لگے اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا ہوتا، سب برابر ایک ہی حالت کے ہوتے. جیسے ہر ماں باپ کا دل چاہتا ہے نا میرے سارے بچے خوش ہوں ٹھیک ہوں. تو جواب ملا یہ اس لیے ہے کہ ہر شخص میری شکر گزاری کرے. اور آپ کو پتا کہ ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی وحد یاد ہے، لیکن ایک شخص تو وہ کہتے ہیں کہ آج بھی مجھے وحد ایسے یاد ہے کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور آپ یاد رکھیے جتنی پاکیزہ بچپن جوانی ہوگی نا اتنا یہ حد آپ کو یاد رہے گا، اور گناہ ان ساری چیزوں کو بلا دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ دکھی کر لیتے ہیں گناہوں میں ڈال کے، غلط چیزوں میں لے جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھیں گے، تو سب کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ بھی ہو جائے گا. اللہ اکبر. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جن کو وعدے بھول جاتے ہیں ان کا کیا حال ہے. اس میں ایک دو مشکل لفظ ہے، جیسے ذریت کا لفظ ہے تو زال را یا کو کہتے ہیں، پھیلانے کا معنی ہوتا ہے زر ان پیدا، چھوٹی اولاد کے لیے ہوتا ہے. ذریت کا لفظ ہوتا ہے نا چھوٹے بچے، چونٹی کو بھی ذرا کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب غیر مسلموں کو دین کی آپ دعوت دیں نہ دیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک شخص کا واقعہ آج کل کافی آپ لوگوں کو میسیجز میں آ جا رہا ہوگا، رابرٹ ڈیویلا اس کا نام تھا، ہینڈی کیپ آدمی ہے. خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھے اور کچھ بات ہوئی، ڈیٹیل اگر آپ ہوئی تو آپ کو سنوا دیں گے کسی وقت اس کی سٹوری. اور کہتا ہے کہ جب مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور انہوں نے مجھے کچھ اس طرح کی اسلام کی بات کہی، تو اس کے بعد میں نے سرچ شروع کر دی اسلام کی. اور اسلام کی سرچ جب کی گوگل پہ بیٹھتا تھا، اس میں اس کو کچھ مسلم اسکالرس کی ویڈیوز ملی، اس کو پڑھ کے مسلمان ہوا، اور اس کے بعد اپنے دوست سے ذکر کیا، اس کو اسلام ملا. اور اس وقت اس کا حال کیا کہ وہ مسجد کی نماز چھوڑ نہیں سکتا، اور ایک وقت تھا کہ وہ چرچ میں جانے کا عادی تھا اور پورا جسم ہینڈی کیپ. اس کی تصویر ہے جس کو اللہ لے آئے، گائیڈنس از اے گفٹ. तुम्हें और आप जो गाइडेंस वाले खानदानों घरों में पैदा हुए, अगर हम धक्के खाने के लिए कुछ दिन जहन्नुम पे और पुल सरात पे मारे गए तो कितनी शर्मिंदगी है। तो मत कहिए कि अल्लाह ने लोगों पे जुल्म किया। रॉबर्ट डिवेला को अल्लाह इस्लाम दे रहा है, ख्वाब में नबी मिल गए, हमें तो नबी की किताबें हदीसें बातें सीरत सारी पढ़ा के यकीन दिला दिया, हमारे पास वक्त ही कोई नहीं है पढ़ने का। यही बहुत है जो हम ये थोड़ा बहुत आजकल अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी है, हमारा तो मिजाज ही नहीं रहा। तो इसलिए कभी ये ना सोचिए कि नॉन मुस्लिम्स के साथ कोई ज्यादती है या अल्लाह ताला ने उनको, बल्कि अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड से बात ही इस बेस पे किया करें। ये स्टोरी सुनाए उनको, ये सारी हदीसें सुनाए, ये सारी बातें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उनको बताए। और ये वो तड़प है जो बहुत सारे लोगों को दीन की तरफ लेकर आती है। और इससे भी ज्यादा कोई क्लियर बात होगी कि हाँ हमारे बाप दादा ये करते थे इसलिए हमने भी किया। अल्लाह ने हर हुज्जत तमाम की है, जिसको आप कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कट ऑल द टाइस, कि कल तुम मेरे ऊपर ना इल्जाम देना, क्योंकि अल्लाह को ये पता है कि बंदा इतना इल्जामी है कि इसने कल अल्लाह को भी आके कह देना है कि अल्लाह तूने मुझे नहीं दिया तो ये नहीं किया। हम देते हैं ना माँ बाप को कितनी जल्दी इल्जाम देते हैं, सादों को देते हैं, बड़ों को देते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए कि कल जिनको दुनिया में आदत है उन्होंने अल्लाह को भी जाके कह देना था कि अल्लाह ताला तूने हमें काफिर घर में पैदा किया, तो अल्लाह ताला यहाँ ये बता के अब आगे देखिए कि इसमें किस तरह से बात बता दी